Hare Krishna. फानुसेक के कृष्ण भावना अमृत संघ के प्रचार स्थान पे आप सबका सोमवार के दिन कृष्ण कथा में स्वागत है। धन्यवाद देवकी नंदन प्रभु और यहाँ के भक्तों का जिन्होंने हमको आपकी सेवा का अवसर दिया है। तो जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी, जन्म का मतलब प्रकट होना। जन्म का अर्थ संस्कृत में पैदा होना नहीं है। जन्म का संस्कृत में जन्म का अर्थ है जो पहले दिख नहीं रहा था अब दिखने में आ गया। था पहले भी लेकिन दिखने में नहीं आ रहा था। ये मुश्किल नहीं है समझना। बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सबको पता है कि बच्चा है, लेकिन उसका जन्मदिन तो उस दिन होता है जब वो प्रकट होता है। तो बच्चा पहले था कि नहीं था? बच्चा पहले था ना, सबको मालूम था। 8-9 महीना पहले पता है कि बच्चा है, लेकिन जन्मदिन कब होता है? जिस दिन दिखते हैं, सामने प्रकट होता है। तो जन्मदिन का मतलब है जो पहले था दिखने में नहीं आ रहा था अब दिखने में आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो पहले पिता के अंदर पुत्र होता है बीज के रूप में, वो तो पहले से है। तो ये जन्म का संस्कृत में अर्थ पैदा होना नहीं है, प्रकट होना है। तो अष्टमी का मतलब आठवां दिन। जैसे अभी एकादशी गई, फिर पूर्णिमा आई, पूर्णिमा के बाद आता है एकम, दूज, हाँ, तीसरे दिन की तिथि को क्या बोलते हैं, तीज, चौथ, पंचम, षष्ठी या छठी, छह, सप्तम और अष्टम। 15 दिन होते फिर नाम, दसम, ग्यारस, बारस, त्रेस, चौदस और पूर्णिमा। एक बार पूर्णिमा आएगी, एक बार अमावस आएगी। तो एक को कहते हैं ब्राइट फोर्टनाइट, एक को बोलते हैं डार्क फोर्टनाइट। चांदनी रातें, अंधेरी रातें। तो भाद्रपद महीने के अंधेरी रातें, क्योंकि अब पूर्णिमा तो गई, अभी जो आएगी वो अमावस्या आएगी, काली रात आएगी 15 दिन की। तो ये जो दूसरा भाग है पूर्णिमा के बाद का, इसकी जो अभी अष्टमी आएगी, ये भाद्रपद महीने की अष्टमी है। जनरली अगस्त में आती है। तो ये अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, ठीक है ना? पहले थे अष्टमी के दिन, आज से 5,300-5,400 साल पहले भगवान प्रकट हुए। तो अब कहां है भगवान? हम तो वहां थे नहीं, हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं। तो हमारी इच्छा तो होगी ना कि भगवान को हम सुने देखें, क्या विचार है? अब क्या चाहते हैं, सोचते हैं ऐसे कि नहीं सोचते हैं? भाई भगवान श्री कृष्ण गोकुल में, गोकुल मथुरा के कंस के कारागृह में प्रकट हुए, गोकुल में जाके वसुदेव छोड़ के आया, और फिर नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया भगवान के जन्म का, नंद उत्सव मनाया दूसरे दिन। फिर 6 दिन के बाद पूतना को भगवान ने होंठों से प्रेम करते हुए ये प्राण त्याग दिए, उसके प्राण निकाल लिए। और फिर अभी भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के थे तो शक्तासुर को मार दिया केवल पांव को छूकर, अभी 1 साल के हो गए तो तृणावर्त को मार दिया। तो ये सब कथाएं तो हमने सुनी, लेकिन फिर भी मन करता है कि ये सब वृंदावन के भक्तों ने गोद में खिलाया, माँ यशोदा ने दूध पिलाया, गोपियों के घर में माखन चोरी करने गए, मटके फोड़े, तो ये सब लीलाएं तो सुनते हैं ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया कृष्ण को, ये सब बातें हमने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमने बताई, हमको बताइए। क्यों, आप लोगों ने पढ़ा है क्या कहीं? ये तो हमारे घर में दादा दादी से ये कथा आती है कि ऐसे भगवान राम का प्रकट दशरथ के घर में हुआ, उनके 3 भाई थे और 3 भाई थे महाराज, 10-3 माताएं थी, 14 साल वनवास चले गए, जनकपुर में विवाह हुआ। ये आपने पढ़ा नहीं है? ये तो घरों में हमारे कथा सबके घर में बचपन में दादा दादी सुनाते, क्यों भाई सुना है ना। लेकिन हम, हमारी इच्छा होती है कि भगवान को देखना चाहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी इच्छा है कि भगवान को देखना चाहिए, भगवान को सुनना चाहिए, भगवान से मिलना चाहिए? ये जब तक इच्छा नहीं होगी हृदय में तब तक भगवान यही है लेकिन प्रकट नहीं होंगे। है तो यही भगवान यहां है कि नहीं? अभी आपका क्या विचार है, भगवान यहां है कि नहीं? अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं बोलता हूं उसको छोड़ के यहां और कोई साउंड है अभी? हाँ, कुछ और फोटो है, चित्र है, कुछ शक्लें हैं यहां कहीं दिखती हैं? कुछ नहीं दिख रही है ना। अगर यहां अभी रेडियो लाके उसको किसी एक स्टेशन पे उसका ट्यून करके फाइन लगाओ तो आपको रेडियो मॉरिशस सुनने आएगा में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा ना। तो इसका मतलब साउंड तो यहां है, रेडियो नहीं है। रेडियो हो तो साउंड सुन सकते हैं, क्यों जी? और टेलीविजन यहां रख दे तो कितने चित्र पूरी दुनिया के नजर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अमेरिका पे भी नजर आ जाएंगे, हाँ इंग्लैंड के भी नजर आ जाएंगे, भारत भी दिखने में आ जाएगा, फिल्में भी दिखने में आ जाएंगी, सीरियल भी दिखने में आएगा, कृष्णा भी दिखने में आएगा। आता है कि नहीं आता है? तो यहां फोटो भी है, यहां साउंड भी है, लेकिन अगर आपके पास रेडियो और टेलीविजन है तो सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, ये सत्य है कि नहीं है? तो अभी भगवान भी यहां है लेकिन उसको कैसे देख सकते हैं? इसलिए हमारे को अपने हृदय को टेलीविजन बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हृदय दूरदर्शन। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही थी कौरवों और पांडवों की, तो धृतराष्ट्र को संजय हस्तनापुर के महल में युद्ध में क्या हो रहा था सब सुना रहा था। अब उसने तीर मारा, उसके तीर को उसने काटा, अब उसका गर्दन कट गया, ऐसे रनिंग कमेंट्री भगवद गीता में युद्ध की कर रहा था संजय। तो वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे टेलीविजन में आज आप क्रिकेट होने वाली कोई कोई मैच फुटबॉल होती है इंग्लैंड में तो यहां देख सकते हो, तो ये जब आप लोगों के सब लिए संभव है कि कोई चीज कहीं हो रही है और उसी वक्त आप उसको देख सकते हो, तो वैदिक समय में ऐसे ही दूर की चीजों को देखने के लिए हृदय में मंत्र से दूरदर्शन स्थापित किया जाता था। आपकी आपकी टीवी की अभी भी समस्या ये है कि लाइट चली जाएगी तो नहीं दिखाई देगा, अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो देखना बंद हो जाएगा, लेकिन ये जो बहुत सटल साइंस थी हमारी वैदिक, जो बहुत सूक्ष्म विज्ञान था कि हृदय में आंखें बंद करके सब देखने को लगता था और वो बोलता जाता था अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, और ये विज्ञान व्यासदेव के पास था और व्यासदेव ने ऐसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, डिवाइन विजन दिया था, तो वो डिवाइन टेलीविजन था। और आपका टेलीविजन सोनिया है, ये सोनी का है, वो डिवाइन था, तो उसमें सिर्फ अंतर इतना है वो डिवाइन टेलीविजन था और वो डिवाइन टेलीविजन अभी आपके हृदय में भी पड़ा है लेकिन उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। इसे टेलीविजन तो बहुत दुकान पे पड़े हुए हैं लेकिन सबके अंदर चित्र नहीं दिखते क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं जुड़ता है। अगर उसका कनेक्शन जोड़ दोगे, एरियल ऊपर कर दोगे, एक बार एक बड़े बड़े बाल थे बेचारे के, पगड़ी बांधता था, दाढ़ी भी बड़ी थी, उसकी पत्नी बीमार रहती थी, उसका बेटा स्कूल में पढ़ता नहीं था और उसका धंधा चलता नहीं था बिजनेस। तो एक पंडित जी के पास पूछने गया कि हमारे घर में तो समस्या है, आप जरा देखो ज्योतिष में कि समस्या का समाधान क्या है। तो पंडित जी ने ऐसे खोला, बोला तुम्हारे बेटे के ऊपर बुध का प्रभाव है तो इसका तुम ये पूजा करके बुधवार का ऐसे करो, तुम्हारा बच्चा पढ़ना लग जाएगा, उसका बुध स्ट्रांग हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, सूर्य स्ट्रांग होगा, पत्नी तुम्हारे ऊपर के ऊपर शनिवार शनि की दशा है, इसकी ये पूजा करो और तुम्हारा धंधा नहीं चला रहा है, तुम भगवान लक्ष्मी नारायण की।
पूजा करो, तो वो ऐसे देखने लगा, पंडित जी ये सब आपको कैसे पता लगता है। तो उसने देखा ये बेचारा गांव का आदमी है, इसको क्या बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र है। पंडित जी ने अपनी चुटिया को खोला और ऐसे करके लंबा करके बोला, देखो बेटा ये एरियल है ना, इससे ऊपर से सब समाचार आता है। एरियल है और इसको ठीक करके ऐसे सेट करेंगे तो फिर ऊपर से समाचार आने शुरू हो जाए। इसमें समाचार ऊपर से आने लगता है। तो वो जो गांव वाला था उसने अपनी पगड़ी उतारी और उसने अपनी चुटिया निकाली, वो 2.5 फुट लंबी थी। उसने बोला, महाराज मेरे को समाचार तो नहीं मिल रहा है। महाराज ने उसकी दाढ़ी को बोला, तुम्हारी यहाँ से अर्थिंग हो जाती है, इसको सेव कर लो, तुम्हारे को फिर समाचार, यहाँ से तुम्हारा सब अर्थिंग हो जाता है। हरे कृष्णा। तो कहने का हमारा उद्देश्य ये है कि जब तक एरियल नहीं होगा और जब तक अर्थिंग बंद की जा नहीं की जाएगी, तब तक अंदर में दूर से दर्शन दिखाई नहीं देगा। समझे, ये बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये ही नहीं है तो कहां से भगवान दिखाई देगा। एक बात समझ में आ रही? अब दूसरी बात के ऊपर आओ। भागवत के अंदर लिखा है, 6 प्रश्न पूछे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों ने। नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान है भारत में, उसको कहते हैं चक्र तीर्थ। भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान तो सब जगह है लेकिन जहां जहां भक्तों ने भक्ति करके उसको प्रकट किया है वहां वो दर्शन देते हैं। है तो सब जगह, जैसे पानी धरती में सब जगह है ना, नीचे पानी है ना, लेकिन पीने के लिए वहां मिलता है जहां किसी ने बोरिंग किया है और पंप लगाया है तो पानी निकल आएगा। तो सब जगह तो पानी नहीं मिलेगा, जहां बोरिंग होगी वहां मिलेगा। पानी है सब जगह लेकिन सब जगह से पानी निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो? भीष्म पितामह जब सर सैया, सर का मतलब तीरों की सैया पे सोए थे, तो कहने लगे कि दुर्योधन पानी ला के दो। पहले तो कहा तकिया चाहिए, मेरा सर नीचे लटक रहा है। तो दुर्योधन बहुत गद्दे अच्छे अच्छे रेशमी लाया, बोला जो वीर के लिए तकिया चाहिए ऐसा तकिया चाहिए धनंजय को बोलो। तो अर्जुन ने 3 बाण पीछे ऐसे मारे कि भीष्म पितामह का सर उसके ऊपर रेस्ट करने लगा। तब कहा जल चाहिए, पानी पीऊंगा। तो सोने के ट्रे के अंदर पानी भर के, और जैसे राजा महाराजों के लिए लाता था, भीष्म पितामह तो महाभागवत पुरुष और कुरु वंश का पितामह था, तो सब सामग्री बोला ये पानी नहीं, मेरी मां गंगा का पानी चाहिए। अब सब ऐसे देखने लगे। उस वक्त अर्जुन ने एक बाण उधर मारा पृथ्वी में और पृथ्वी में से गंगा की धारा निकली और भीष्म पिता के मुख में जाने लगी। तो पानी भी वहां था लेकिन केवल अर्जुन को निकालना आया गंगा को, और किसी को समझ में नहीं आया। और आज भी आप कभी कुरुक्षेत्र का दर्शन करने जाएंगे तो वो जगह जहां जहां गीता भगवान ने कही है ज्योतिश्वर, उस स्थान के बाद थोड़ा 1 किलोमीटर आगे आएंगे तो वो जगह है जहां भीष्म पितामह तीरों की सैया के ऊपर सोए हुए हैं, मंदिर बनाया है और पास में कुंड है, उसको गंगा कुंड कहते हैं, भीष्म देव के लिए अर्जुन ने वहां से जल निकाला था। तो ऐसे नैमिषारण्य का स्थान जो है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम सुना है? त्रिवेणी का मतलब 3, संगम का मतलब मिलना, 3 नदियों का मिलना, 3 दिव्य रिवर्स एक जगह मिलती हैं, उसको बोलते हैं प्रयाग। प्रयाग का मतलब नदियों का मिलना। तो एक प्रयाग राज है, सारे तीर्थों का राजा है प्रयाग राज। वहां गंगा जी मिलती है जमुना जी से, और सरस्वती पाताल से आके उसको मिलती है। और ये प्रयागराज आजकल भारत में इलाहाबाद जिस शहर का नाम है वहां ये प्रयाग है। और आने वाले जनवरी 14 से वहां 12 साल का बहुत बड़ा महाकुंभ मेला लगने वाला है, जिसमें 500,000 पीपल से ज्यादा एक दिन में गंगा के उस जगह पर स्नान करेंगे जहां दो धाराएं मिलती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी संगम पर स्नान करके कीर्तन किया करते थे और 10 दिन एक जगह के ऊपर बैठ के 10 अश्वमेध घाट, जहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे पूर्व धर्मात्मा राजाओं ने, वो एक घाट बना हुआ है वहां, वहां बैठ के रूप गोस्वामी को कृष्ण भक्ति रस के शास्त्र का उपदेश दिया था। तो वहां एक मंदिर है ऊपर भगवान का, उसको वेणी माधव कहते हैं या बिंदु माधव, दो एक जगह वेणी माधव है एक जगह बिंदु माधव है, एक है बनारस में और एक है प्रयाग में। तो वहां तपस्या कर रहे थे ऋषि, सनक ऋषि भृगु का पुत्र है और उसके साथ 88,000 ऋषि थे और वो सारे ब्रह्मरेता और ऊर्ध्वरेता थे, ब्रह्मचारी थे। वो तपस्या कर रहे थे, कलयुग शुरू होने वाला है, कलयुग में लोग दुखी हो जाएंगे, लोगों की आयु कम हो जाएगी, लोगों के पास दुर्भाग्य होगा, लोगों के पास बुद्धि भी नहीं होगी, उन लोगों को कैसे संसार के संकट से मुक्त किया जा सकता है। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना की तो भगवान ने कहा ये मेरा चक्कर सुदर्शन जहां जाके पाताल में चला जाए वहां तुम जाके अनुष्ठान करो, कलयुग को रोका जा सकता है। तो आगे आगे चक्कर चला, पीछे पीछे ये ऋषि चले। तो वहां से आते हुए थोड़ी दूर पे, ज्यादा दूरी नहीं है वहां से, 150-100 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी होगी, वहां लखनऊ से 100 किलोमीटर दूरी के ऊपर लखनऊ, नाम सुना है लखनऊ, उसका पुराना नाम था लक्ष्मणो, लक्ष्मण ने उस नगर को स्थापित किया था, लक्ष्मणो वो फिर लखनऊ हो गया, जैसे लखन लिखा है पूरी रामायण में, लखन है, लक्ष्मण को लखन कहते हैं, ऐसे कानपुर सुना है, वो भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में भक्तों ने कान्हापुर था तो वो कानपुर हो गया। तो ये आपको मालूम है मॉरिशस कैसे इसका नाम हुआ, और राम जी ने जब बाण मारा था मारिच को, मारिच इस हिंद सागर में आके गिरा था, तो इसका नाम मारिची मारुची मारशे मॉरिशस हो गया आस्ते आस्ते। तो वो मारिच को ढूंढते ढूंढते हनुमान यहां आया, अभी आपके घरों में बैठा हुआ है, ढूंढ रहा है कहां गया मारिच। ऐसे नाम ऑस्ट्रेलिया, आपकी भाषा में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का अर्थ है जहां अस्त्र शस्त्र रखे जाए, उस जगह में पांडवों के अस्त्र शस्त्र रखते थे, वो अस्त्र वो उनका एम्यूनेशन गोडाउन हुआ करता था, ये पूरा भारतवर्ष था। तो ये प्रभुपाद ने एक प्रवचन में कहा कि वो लंका से टनेल थी जो साउथ अमेरिका तक जाती थी, उस जमाने में रावण के बुद्धि इतनी थी कि अंडरग्राउंड टनेल वहां तक थी। तो चक्कर वहां उस स्थान के ऊपर आके गिरा, उसका नाम हो गया चक्कर तीर्थ नैम शरण्य। उस नैम शरण्य के स्थान के ऊपर उन ऋषियों ने यज्ञ शुरू किया, लेकिन यज्ञ कलयुग के अंदर कोई देवता तो आता नहीं है, पहले यज्ञ में सब देवता आते थे। आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा था, ऋषि श्रृंग बैठा था यज्ञ करने के लिए, वशिष्ठ आदि ऋषि बैठे थे, तो ब्रह्मा जी वहां अपने स्थान के ऊपर, एक यज्ञ में ब्रह्मा का स्थान होता है, इंद्र आया अपनी जगह पे बैठा, सब देवता आके बैठे, तो उन सारे देवताओं ने एकदम ब्रह्मा जी को कहा पितामह आपने ऐसा वरदान दिया इस रावण को, अब तो हमारा जीना हराम कर दिया है और स्वर्ग के सारे नियमों को उसने तोड़ के भंग कर दिया है। इंद्र तो कहने लगा मेरे को तो उसका बेटा बांध के ले गया था, वो तो मेघनाथ, तो उसको इंद्रजीत की पदवी मिली और मुश्किल से आप छुड़ा के लाए हो, अब कुछ रास्ता निकालिए इस रावण से बचने का। उसी वक्त भगवान विष्णु उस यज्ञ में आए, क्योंकि यज्ञ पुरुष तो भगवान विष्णु ऐसा जिसमें पूजा जाता है, तो भगवान विष्णु को आते ही सब देवताओं ने प्रार्थना की कि हमारी ये संकट है, हमारी समस्या है, ब्रह्मा जी के वरदान से रावण ने तो इतना अत्याचार कर दिया है कि वायुदेव बोलता है मेरे को, तो बोलता है पंखा जलाओ और हम उसको पंखा लगाना पड़ता है उसके लिए। वरुण देव तो बोलता है मैं पानी भरने को मुझे बोलता है, और गंधर्व बोलते हैं हमारे को बोलते हैं हमारे गीत गाओ। हिरण्यकश्यप के लिए नारद जी ने ऐसे कहा है कि मुझे कहता था कि मेरे लिए गाओ, ये भागवत में लिखा है। सिर्फ ब्रह्मा को छोड़ के, शंकर जी को छोड़ के, बाकी सब देवताओं के ऊपर उसने अपना अधिपति जमा लिया था। उसी वक्त भगवान विष्णु ने कहा आप लोग यज्ञ में अपना भाग लेकर जाओ, मैं अपने आप को इस यज्ञ में देने आया हूं। अभी इस यज्ञ कुंड से जो यज्ञ पुरुष निकलेगा उसके हाथ में जो खीर होगी, स्वीट राइस होगा, पायसम होगा, मैं विष्णु के, भगवान विष्णु का, मैं उसमें प्रवेश करता हूं और उसके द्वारा मैं दशरथ के घर में पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि पहले यज्ञ में देवता आते थे, आपस में वहां यज्ञ का भाग लिया करते थे। कलयुग जैसे शुरू हो गया, अब देवता आता नहीं है, अब देवता यज्ञ की आहुति लेने आता नहीं है। और इससे एक बात सिर्फ यहां बात करते हुए सिद्धांत आपको बता रहे हैं कि राम जी का जन्म साधारण बालक जैसा नहीं था। अगर वैसे लड़का ही पैदा होना था तो दशरथ को पहले कौशल्या से क्यों नहीं हुआ? ये तो भगवान विष्णु प्रकट होके उस पायसम के द्वारा चारों रानियों को जैसे भाग करके दिया, आधा भाग कौशल्या को दिया, दो भाग और किए, एक दिया केकई को, एक दिया कैसे इसका एक आठ आना चार आना, चार आने के दो भाग फिर किए, आधा दिया कौशल्या को, बाकी के दो भाग किए, एक भाग किसको दिया? केकई को। एक जो और भाग था उसके दो भाग किए और वो दिए सुमित्रा को, और दोनों ने अपने तरफ से आधा आधा करके दिया, केकई ने दिया और कौशल्या ने दिया, तो चार पुत्र हुए। आधे भाग से जो चतुर्व्यूह है, भगवान बलराम जी पहले चार में विस्तारित होते हैं, कृष्ण बलराम, बलराम चार में एकदम विभाजित होते हैं, विस्तृत होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। तो पहला वासुदेव, भगवान रामचंद्र आधे से वासुदेव हुए। फिर जो संकृष्ण है, वसुदेव संकृष्ण है, वो लक्ष्मण जी हुए। अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इन दो, ये दो भरत और शत्रुघ्न हुए। तो ये चार पहले जो भगवान के विस्तार है, ऐसे इनका अवतार विष्णु तत्व है चारों ही। और कहीं कहीं रामायण में सुदर्शन चक्र का और शंख का अपने भरत को और शत्रुघ्न को प्रकट बोलते हैं, लेकिन है सारे विष्णु तत्व। तो ऐसे प्रकट हुए, तो ये प्रकट होना सामान्य बच्चे की तरह तो नहीं है ना, ये तो भगवान प्रकट हुए वहां। और मां कहती है, आप कभी गाते हैं रामायण के अंदर, अद्भुत बालक था और मां ने कहा कि आप बच्चे बन जाओ, और तब भगवान रोने लगे और छोटे बच्चे बन गए। अद्भुत रूप में प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे राम जी भी। तो वो ऋषि वहां यज्ञ कर रहे थे, कहां कहां ऋषि यज्ञ कर रहे थे? नये में शरण्या में। लेकिन कलयुग शुरू हो गया, यज्ञ से कोई लाभ नहीं होने लगा। वो ऋषि ही कहते हैं यज्ञ के दूहे से सब कुछ काला तो हो गया है, लेकिन हमारे हृदय में कोई प्रकाश नहीं हो रहा है, हम कहीं रास्ता नहीं देख रहे हैं कलयुग के रोकने का। उस वक्त वहां सुखदेव गोस्वामी का शिष्य सूत गोस्वामी उगर सर्वा वहां आया। उनको सबने कहा आपके पिताजी हमको कथा सुनाया करते थे, विष्णु कथा, कृष्ण कथा, राम कथा, पुराणों का, आप कृपा करके कलयुग के समस्या में हमारे ऊपर एक कृपा कीजिए और ऐसी कथा सुनाइए कि कलयुग को रोका जा सके। तो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सूत गोस्वामी उगर सरवा ने कहा, उसका पिताजी रोम हर्षण था जो व्यास देव का शिष्य था और जिसको बलराम जी ने तिनके से उधार किया था तीर्थ यात्रा के समय, तो इसको बलराम जी ने आशीर्वाद दिया था उगर सरवा को कि आप कृष्ण कथा अति सुंदर सुना के कल युग में लोगों का उद्धार करेंगे, आपकी आयु आपकी एज अनलिमिटेड हो जाएगी, बड़ी एज हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं अभी अभी अपने आंखों के सामने चमत्कार देख के आया हूँ, मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी ने जब सुखताल में परीक्षित महाराज को सारे ऋषियों के समाज के अंदर भागवत कथा सुनाई थी तब मुझे बुलाया था कि आप बेटा मेरे पास आकर बैठो, और मेरी जितनी बुद्धि थी मैंने उस कथा को ग्रहण किया है और मैं आपको वही भागवत कथा सुनाऊंगा जो कलयुग को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है। अब ऋषियों ने, कौन से ऋषियों ने, जो कलयुग को रोकना चाह रहे थे, सनक आदि ऋषि, सनक के साथ 88,000 ऋषि, उन्होंने 6 प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी से। उन 6 प्रश्नों में एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती से चले गए अपनी लीला समाप्त करके, तो फिर धर्म ने किसका शरण लिया, धर्म किसके शरण में गए, क्योंकि भगवान कहते हैं धर्म मैं स्थापित करता हूं, धर्म मैं चलाता हूं, तो धर्म कहां गया, जब भगवान अपने धाम चले गए तो धर्म किसके चरण में गया। श्री कृष्ण उपधाम अश्वधाम उपगते, भगवान अपने धाम चले गए तो धर्म कहां गया, तो इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण के अपने धाम जाने, यहां से श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे और यहां से श्री कृष्ण भागवत के सूर्य के रूप में प्रकट होने लगे और भागवत के प्रकाश से कलयुग के लोगों के अज्ञानता और अंधकार को प्रकाशित करके भगवान का दर्शन कराया जाएगा। तो श्री कृष्ण जाते ही अपनी जगह पे श्रीमद् भागवत को इस संसार में प्रकाशित करके गए हैं, इसलिए भागवत का अर्थ है भगवान के समान, भागवत जस्ट लाइक श्री कृष्ण, भागवत है श्री कृष्णेर अंग, भागवत भगवान श्री कृष्ण का एक एक अंग है, जैसे हमारे पांव हैं, हाथ हैं, ऐसे श्री भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है। तो हमने आपसे प्रश्न ये किया था कि आप भगवान को देखना चाहते हो तो फिर आपको भगवान भागवत के एक एक अक्षर में मिलेगा, श्री कृष्ण को मधुर रूप में लीलाओं को देखना चाहते हो, और वैदिक शास्त्र लिखता है कि भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता, भगवान को देखने के लिए कान है, श्रोत इक्षताम, अक्ष कहते हैं आंख को और श्रोत कहते हैं सुनने को, कान ही आंख है भगवान को देखने के लिए। तो भागवत को श्रवण करेंगे भागवत पुरुषों के संग में, भागवत गीय भागवत स्थाने, महाप्रभु कहते हैं भागवत पुरुषों के संग में भागवत के श्रवण करने से भगवान कान के द्वारा हृदय में प्रकट होंगे और फिर हृदय में टेलीविजन की तरह सब कुछ देखने लगेगा, दिखने लगेगा। आपको ये बात समझ में आई, श्री कृष्ण को मिलना है देखना है तो आपको भागवत का श्रवण करना पड़ेगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। श्रृणवताम श्रद्धया नित्यम, जो नित्य श्रवण करते हैं, और नित्य का अर्थ शील प्रभुपाद ने लिखा है उत्साह के साथ, एंथ्यूजियास्टिकली, बड़े ईगरनेस के साथ, जब वो नित्य का मतलब प्रतिदिन रेगुलरली
श्रृणुताम श्रृणवताम शर्ध्या नित्यम ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम सिर्फ सुनना कान के द्वारा सुनना ही नहीं है, ग्रहणतश्च मतलब उसको ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब है उसको समझना और उसको जीवन में उतारना प्रैक्टिकली। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र में श्रवण के तीन अंग हैं, थ्री पार्ट्स ऑफ हियरिंग। कान के द्वारा केवल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको श्रवण कहते हैं। मन के द्वारा मनन होता है, अंडरस्टैंडिंग माइंड से होता है, और निध्यासन एप्लीकेशन दिल से होता है। कान से सुनते हैं, दिमाग से समझते हैं, दिल से करते हैं। ये तीन जब पूरे होते हैं तब श्रवण पूरा होता है, नहीं तो केवल कान से सुनने से काम नहीं चलता। काम से कान से सुनना है, दिमाग से समझना है और दिल से करना है, इसको बोलते हैं ग्रहणतश्च सचेष्टितम। बड़ा प्रयास करके, अभ्यास करके, ध्यान लगाकर उसको ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण का मतलब अपने हृदय में ग्रहण करना, जैसे प्रसाद ग्रहण करो इसका मतलब खाओ, प्रसाद ग्रहण करो, भागवत ग्रहण करो इसका मतलब भगवान को आप अपने हृदय में स्थापित करो। और इसलिए तीसरी लाइन में लिखा है, अगर आप प्रयास करोगे भागवत को समझने का और भागवत की शिक्षा से ऊपर चलने का, भागवत धर्म के को आप स्वीकार करोगे, कालेन अति दीर्घेण, कालेन अति दीर्घेण, काल का मतलब समय, अति दीर्घ मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसका मतलब वेरी क्विकली, बहुत जल्दी क्या होगा, भगवान बिशते हृदय, भगवान आके हृदय में बस जाएंगे। ये भागवत का श्लोक है कि अगर नित्य श्रद्धा पूर्वक भागवत का श्रवण करके, ग्रहण करके, उसको जीवन में भागवत धर्म के अनुसार जीवन बिताएंगे तो तत्काल बहुत जल्दी इमीडिएटली भगवान हृदय में प्रकट होंगे। कहां से आएंगे भगवान, ये प्रश्न पूछा गया है मां, कैसे भगवान हृदय में आएंगे, प्रवेष्ट करण रंध्रानां, कानों के द्वारा भगवान हृदय में आएंगे। प्रवेष्ट करण रंध्रानां स्वानां सरोरवहम, सरोरव कहते हैं हृदय का कमल, हृदय में एक कमल दल है, कमल का मतलब कमल के फूल की जितनी पंखड़ियां ऐसा हृदय कमल की पंखड़ी है। सरोरवहम स्वानाम, जैसा आपका भाव है, जैसा आपका भाव है, इसका अर्थ यहां ये है, कोई अगर भगवान को दास के भाव में पूछते हैं तो मालिक के रूप में प्रकट होंगे, कोई मित्र के भाव में तो मित्र के रूप में प्रकट होंगे, कोई बालक के भाव में तो बालक के रूप में प्रकट होंगे, कोई राम भक्त है तो राम के रूप में प्रकट होंगे, कोई नारायण भगत है तो नारायण के रूप में प्रकट होंगे, कोई नरसिंह भगत है तो नरसिंह रूप में प्रकट होंगे हृदय में। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ठाकुर जी वैसे सबके हृदय में अंगूठे के साइज के चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के रूप में परमात्मा सदा के लिए बसते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण भक्ति करता है तो वही श्याम सुंदर त्रिभंग ललित के रूप में अपने आप को उनको हृदय में दर्शन देते हैं, तो वही भगवान आपके भाव के अनुसार अंदर प्रकट होते हैं। एक बहुत रामायण के भाव में आपने सुना होगा कभी, एक एक तुलसीदास के लिए कहते हैं कि वृंदावन में गए तो भगवान श्री कृष्ण को जगह, सब मंदिर तो 5000 ही कृष्ण के हैं, तो कहते हैं कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ, मेरा इष्ट देव रामचंद्र है, तो क्या सूरत तो बहुत सुंदर है, क्या छवि आपकी, छवि, छवि का मतलब सूरत, कितनी सुंदर है, तो उसी वक्त भगवान ने धनुष बाण हाथ में लिया और वहां तुलसीदास ने प्रणाम किया, ऐसे उनके जीवनी की कथा है।
तो ऐसे भगवान अपने आप को उसी रूप में प्रकट कर देते हैं जिस जैसा भगवान भक्त का रूप है। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि भगवान दिल में प्रकट होंगे तो क्या करेंगे। हमारे दिल में भगवान अगर प्रकट हो जाएं तो क्या करेंगे। अब इस बात को आप दिमाग में रखिए, मैं बता रहा हूं। अब हम चलते हैं भागवत के अंदर। जैसे हमने आपको राम के प्रकट्य का रहस्य बताया कि भगवान विष्णु उसी वक्त उस खीर के अंदर प्रवेश किया जो महाराज दशरथ ने यज्ञ कुंड से निकले हुए देवता के द्वारा लिया और अपनी रानियों को बांट के दिया। तो भगवान विष्णु ही अपने तत्व से विष्णु ही साक्षात प्रकट होके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुआ। और ऐसा भी वर्णन है उसमें से एक न, उसमें असल में कहते ये है कि एक उसके हाथ से तो दिव्य चील ने उठा के प्रसाद को ले जाने लगी तो बाकी दोनों ने अपना आधा करके उसको दे दिया। तो वो कहां गया? वो सीधा वायुदेव ने उसको उठा के जाके अंजनी के उदर में स्थापित किया। वो हनुमान भी उसी उद्रुद्ध तत्व से वहां से दिव्य तत्व से उत्पत्ति हुई है। कहीं इसका हनुमान का वर्णन भी ऐसे मिलता है, इसलिए उसका नाम वायुपुत्र है। कभी रुद्र का अंश कहते हैं, अंजनी सुत तो मां का नाम है और केसरी नंदन कहते हैं। तो ये दिव्यता है, ये कोई साधारण स्त्री पुरुष के बच्चे पैदा होते हैं ऐसे पर नहीं पैदा होते हैं। इसलिए भगवत गीता में बहुत सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स ऑफ भगवत गीता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम इति स अर्जुन। अर्जुन जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को दिव्य मानता है, अलौकिक मानता है, ट्रांसेंडेंटल मानता है और तत्व से अगर इसको जान लेता है तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं आएगा। शरीर छोड़ने के बाद मेरे पास, मेरे धाम में मेरी जनता बनेगा, मेरा एसोसिएट बनेगा। तो ये भगवान राम के जन्म का रहस्य है। अब श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य सुनिए। भगवान अपि विश्व आत्मा। कौन भगवान है? विश्व आत्मा। विश्व का मतलब सारे ब्रह्मांड। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है तब हम जीवित हैं, आत्मा निकल गई तो कहेंगे मर गया। तो ऐसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर भगवान है तब ब्रह्मांड है, भगवान निकल जाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। तो भगवान विश्व का आत्मा है। ये तो हुआ भगवान का विश्व आत्मा विराट रूप। एक विश्व आत्मा का अर्थ है जो कण कण में, जीव के हृदय में और कण कण में परमात्मा के रूप में समाये हुए हैं, उसको विश्व आत्मा कहते हैं। हर एक के हृदय में जो भगवान विराजमान है उसको विश्व आत्मा कहते हैं। तीसरा विश्व आत्मा का अर्थ है सारा विश्व जिससे प्रेम करता है, क्योंकि सारे विश्व का पालन पोषण तो वो करता है भाई। जो आपका पालन पोषण करेगा, बच्चा रोएगा तो किसको बुलाता है? हाँ, माँ को बुलाता है। आपने देखा है कोई चोट लगती है बड़े को भी तो मेरी माँ ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है ना। हाँ, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, क्या बोलते हैं? हाँ, माँ बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि जब भी हमको भूखे थे रोए तो माँ ने गोद में उठाया, गंदे हो गए तो माँ ने साफ किया, चोट लगी तो माँ ने पाला। तो जो पालन पोषण करता है वो याद आता है। ये नियम है संसार का। तो भगवान हमारा पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता मह। मैं जगत का पिता हूं, माता हूं। धाता का मतलब दूध पिलाने वाला, जैसे धाता कहते हैं जो दूध पिलाए, इसका मतलब पालन पोषण करने वाला मैं हूं। तो भगवान हमारे माता पिता। वैसे भी आप मंदिरों में जब आ जाते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? तुम्हें वो माता है पिता तुम्हें, यही तो प्रार्थना करते हैं। पहले माता इसलिए कहते हैं कि पालन पोषण करता है भगवान हमारा। तो भगवान विश्व आत्मा का अर्थ है जिससे सब प्रेम करते हैं। जैसे संकट में मां याद आती है ना, जैसे संकट में भगवान के भक्त एकदम कहेंगे चोट लग गई हे गोविंदा हे राधे, ऐसे मुख से निकलेगा। ये हमारा रोज जप करने का उद्देश्य ये है कि अचानक जब और कोई अचानक कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो उस वक्त हमारे मुख से हरे कृष्णा निकलना चाहिए, हरे राम निकलना चाहिए, हे गोविंद निकलना चाहिए। ये हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि अंत समय हमारे मुख से भगवान का नाम निकले। ये प्रैक्टिस इसलिए करते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंत समय ये नहीं निकलेगा। इसलिए अभ्यास करेंगे तब निकलेगा। इसलिए आजीवन अभ्यास इसका करना है कि अंत समय और कोई इतना टाइम भी नहीं होगा कि हम कुछ पढ़ सकें, कुछ देख सकें, कुछ नहीं। उस वक्त केवल मुख से एक भगवान का नाम निकला तो पास हो गए, नहीं तो फेल हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ी परीक्षा है, सबको देनी पड़ती है। मृत्यु सबसे बड़ी परीक्षा है। उसमें पास वो होता है जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है। भगवान का स्मरण, स्मरण का मतलब जिसने याद किया है पूरी जीवन में भगवान को, वही उस वक्त उसके मुख से निकला तो पास हो गया, नहीं तो फेल होगा, वापस उसी क्लास में। बच्चा फेल होता है तो उसी क्लास में वापस रहता है ना, तो फिर वापस इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट मृत्यु का कैसा होता है, उस वक्त जो हमारी मति होती है, मति का मतलब बुद्धि, जैसे अंत मति सो गति, अंत में जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसी हमारी गति होगी। गति का मतलब वो स्थान हम प्राप्त करेंगे, अंत मति सो गति। तो अंत में हमारे मन, वैसे भगवान कहते हैं मुझे बुद्धि में बिठा दो। भगवद गीता का सार ये है, मई एव मन आधस्व मई बुद्धिम निवेशय, मई एव मन आध, केवल मुझ में ही तुम्हारे मन को लगा दो। जैसे आधस्व का एक अर्थ है डिपॉजिट करना, जैसे आपके पास कोई सोना होता है तो आप बैंक के लॉकर में जाके डिपॉजिट करके आते हैं कि घर से कोई चोरी करके जाएगा, है ना। बैंक के लॉकर होते हैं, यहाँ लोग रखते हैं ना सामान लॉकर में जाके। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा मन ऐसा है कि ये चोरी हो जाएगा, कभी कुत्ते के जन्म में चला जाएगा, कभी बिल्ली के में, कभी गधे में, इसलिए तुम मेरे पास डिपॉजिट कर लो, नहीं तो पता नहीं कहां चला जाएगा। और फिर भगवान दूसरा कहते हैं मई एव मन, मई बुद्धि में निवेश है। आपको पता है घर को संस्कृत में बोलते हैं निवास, निवास स्थान। तो भगवान कहते हैं तेरी बुद्धि को मेरा निवास स्थान बना दो, इसका अर्थ है मुझे बुद्धि में बिठा दो। भगवद गीता में शक्ल, जो भगवद गीता के ऊपर चित्र है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण कहां बैठे हैं, हाँ कहां बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के जो फोटो है उसके ऊपर, रथ है ना, उसे घोड़े हैं और फिर घोड़ों के अंदर लगाम है और भगवान श्री कृष्ण लगाम को पकड़े हुए हैं, कहां बैठे हैं चलाने के वाले सारथी के जगह पे। और अर्जुन कहां बैठा है, ऊपर, भगवान से ऊपर बैठा है, कहां बैठा है रथी। ये शरीर हमारा रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका लगाम है। तो मन किसके हाथ में देना चाहिए, श्री कृष्ण के। लगाम किसके हाथ में, घोड़ों का। हम क्या हैं, हम अर्जुन की तरह जीवात्मा हैं, इस शरीर के अंदर हम यात्री हैं, हम इसके अंदर यात्री हैं, ये हमारी गाड़ी है, रथ है। अब इस रथ में मन क्या है, लगाम। इसलिए मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, ये गाते हैं ना भक्त, कभी सुना है, कभी गाते हैं मेरी डोरी तेरे हाथ, इसका मतलब मेरा मन भगवान आपको मैं अर्पित करता हूं। डोरी का अर्थ है मन। तो भगवान कहां बैठे हैं, सारथी के जगह पे। सारथी इस शरीर रूपी रथ की सारथी बुद्धि है, चलाती हमको बुद्धि है, बुद्धि से चलते हैं हम। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, लगाम कृष्ण के हाथ में, और कृष्ण सारथी का मतलब बुद्धि के जगह पे बैठे हैं। तो बुद्धि ने भगवान को बिठाना है, अंत मति, मति बुद्धि को बोलते हैं। इसलिए भीष्म पितामह प्रार्थना करते हुए भागवत में श्री कृष्ण को कहते हैं ये मेरी मति जो है ना, ये आप स्वीकार करो, अथवा इसमें आप प्रवेश करो, या इसको आप ले लो मुझसे। ये 7-8 श्लोकों में भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो बात यह, अंत मति सो गति, अंत समय में बहुत थोड़ा समय मिलता है। मृत्यु का समय कैसा होता है, एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। सावधानी से सुनो। हरे कृष्ण। आप कभी फोटो स्टूडियो में फोटो निकालने गए हैं तो फोटोग्राफर आपको क्या बोलता है? पहले तो सेटिंग करो, फिर आगे बैठो, फिर वो कैमरा लाइट वाइट सब ऑन करेगा, फिर आपको क्या बोलता है? थोड़ा सा स्माइल, और तब उसका हाथ बटन के ऊपर जाता है और क्लिक। अब आपको जब उसने कहा स्माइल करो और उसका हाथ उंगली चली गई बटन के ऊपर, और उस वक्त एक मच्छर आपके नाक में घुस जाएगा, तो आप बताइए ऐसे होगा कि नहीं होगा? बटन तो दब जाएगा ना। अब वो फोटो जब आपको देगा तो आप क्या कहोगे? ये क्या किया है? तो ये मैंने थोड़ी किया है, तुम्हारा फोटो है, जैसी तुम्हारी शिकल वैसी आ रही है भाई। कुछ फोटोग्राफर ने उसमें कुछ एडिटिंग किया है क्या? नहीं, जैसा तुम्हारा शक्ल हो गया ऐसा फोटो निकल गया। तो अंत समय में जैसा हमारे बुद्धि का शक्ल है वैसा फोटो निकल जाएगा। इतना ही टाइम होता है जितना बटन दबाने का टाइम होता है। तो इसलिए मति को भगवान में लगाओ, मति में भगवान को बिठाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवान तो भागवत आप सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान हृदय में क्यों आएंगे तो क्या करेंगे? प्रश्न क्या हमने आपके सामने रखा था? भागवत से कान के द्वारा भगवान हृदय में आएंगे फिर क्या करेंगे, ये प्रश्न है। और हम भागवत से बता रहे हैं, श्लोक है, भगवान अपि विश्व आत्मा, भगवान से सब प्रेम करते हैं। तो भगवान का विशेष गुण क्या है? भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, भयहारी है, भक्तों के फियर को रिमूव कर देते हैं। ये भगवान भक्त वत्सल हैं। जैसे मां की गोद में बच्चे को कोई डर नहीं होता है, ऐसे भगवान की गोद में भक्त को कोई डर नहीं होता। तो भगवान का विशेष गुण विशेष स्वभाव क्या है? भक्तानाम अभयंकर। इसलिए बहुत सुंदर भजन गोविंद दास ने गाया है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, जिसके चरणों को हृदय में धारण करने से सब भय से हम मुक्त हो जाएंगे, उस नंद नंदन का भजन करो। भजहु रे मन, हे मेरे मन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन। बोला कैसे भजन करें नंद नंदन का? तो बोला अभय चरणार विंद रे, जैसे अभय चरणार भक्ति विदान स्वामी ने सिखाया है वैसे भजन करो। उसका अर्थ ये है, क्योंकि इससे पहले भी तो बहुत से लोग गीता पढ़ते थे भागवत पढ़ते थे लेकिन कोई कृष्ण भक्त तो नहीं बन रहा था। जब से अभय चरण भगवान भक्ति विदान स्वामी ने नंद नंदन का भजन करने सिखाया तब से कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। तो जैसे चेतना महाप्रभु ने भविष्यवाणी की कि जगत के कोने कोने में, शहर शहर में, नगर नगर में, सिटी विलेज में, टाउन में हरे कृष्ण मंत्र का जो है ध्वनि सुनाई देगी और गौर निताय की कृपा लोग सारे प्रकट प्राप्त करेंगे, तो ये भविष्यवाणी प्रभुपाद जी ने पूरी की और दुनिया में अभी हो रहा है। ऐसे भगवान ने भक्त ने गोविंद दास ने भविष्यवाणी की थी कि आगे नंद नंदन का भजन जो है वो अभय चरणारविंद आके बताएगा, जिसके भजन से आप भय से मुक्त हो जाओगे। वो क्यों नहीं कर सकता है? वो भी तो कर सकता है भविष्यवाणी, भक्त करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि अभी कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो चेतन महाप्रभु की इस वाणी को सत्य करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की थी, एक दिन ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से लोग वैष्णव तिलक धारण करके, धोती पहनकर, चेतन महाप्रभु के जन्म स्थान के ऊपर हाथ ऊपर करके हरि बोल गौरा हरि गौरा हरि बोलेंगे। ये उनका फोरकास्ट था। और 96 में प्रभुपाद के 100 साल जन्म के उत्सव मनाने के समय इन सारे 108 देशों से 108 कंट्रीज से लोग अपने अपने कंट्री का जो फ्लैग लेकर आए और चेतन महाप्रभु के उसी जन्म स्थान के ऊपर भव्य कीर्तन किया। तो ये भक्त की भविष्यवाणी थी, फोरकास्ट था जो ट्रू हो गया। तो ये ऐसे भय से मुक्त होना है तो नंद नंदन का भजन करो। और भक्ति वेदांत स्वामी ने जैसे समझाया है, इसलिए कृष्ण ने कलयुग में इस्कान के अंदर अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कहां कलयुग में कृष्ण ने अवतार लिया है? इस्कान के गर्भ में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हाँ, जो इसको सीखेगा, गाएगा, जप करेगा, वो भगवान का भक्त बन जाएगा। और भक्त भगवान कैसे हैं? भक्तानाम अभयंकर, अपने भक्तों के भय को दूर कर देते हैं। सबका भय दूर कर, सब भयहारी नहीं है। भक्त शब्द लिखा है भागवत में, भक्तानाम अभयंकर। और तीसरी लाइन में लिखा है आवेश अंश भागे न, अपने षड ऐश्वर्य के साथ, भग का मतलब छह ऐश्वर्य के साथ आवेश प्रवेश किया। मन अनंक दुम दुमी ही, अनंक दुम दुमी वसुदेव का नाम है, जिसके जन्म के समय देवताओं ने दुमदुमिया बजाई थी, ढोल बजाए थे, मृदंग बजाए थे कि ये आ गया, अब भगवान का पिता बनेगा, भगवान इसके यहाँ प्रकट होंगे। कंस का, जरासंध का, असुरों का जो है वो नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये घोषणा देवताओं ने की थी व्यास वसुदेव के जन्म के समय। तो उनका एक नाम है अनंक दुमदुबी, उसके मन में भगवान प्रवेश किया। तथा जगत मंगलम अच्युत अंशम, उसके बाद जगत का मंगल करने के लिए, सारे जगत का कल्याण करने के लिए अच्युत अंशम भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों को अपने अंदर सम्मिलित करके सारे सागे और अश, जैसे कुर्मा, नरसिंहा, वारहा, राम आदि सारे अवतारों को अपने अंदर प्रवेश करके, अंश भाग सारे अंशों को प्रवेश करके, अच्युत अंशम, एक भाव ये है, एक और भी इसका अर्थ है, उसको अभी नहीं कहेंगे। अच्युत अंश है ना, सुर सुते न, सुरसेन के पुत्र वसुदेव के मन से देवी देवकी देव रूपेणी, जो देवी साक्षात देव रूपेणी है, वो साक्षात विष्णु को धारण करने वाली है, उसके मन में प्रकट हुए कैसे? काष्ठा ईष्ट में आनंद कर चंद्रमा प्रभात, ऐसे पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे प्रकट होता है ना, ऐसे अपने आप वसुदेव के मन से देवकी के मन में भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान के जन्म की दिव्यता है। इसलिए यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि सामान्य बच्चे की तरह भगवान का प्रकट्य नहीं हुआ, ये तो स्पिरिचुअल इनिशिएशन की तरह हुआ। वसुदेव ने मानो के देवकी को दीक्षा दे दी, अपने हृदय में प्रकट हुए भगवान को देवकी के हृदय में स्थापित कर दिया। यहां एक बहुत बड़ी शिक्षा की बात लिखी है, छह बच्चे देवकी के पहले कंस ने मारे, वो छह बच्चे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे मन के विकार हैं। कंस भय है, भक्त के मन से जब तक ये विकार सारे नाश नहीं होंगे तब तक भगवान का प्रकट्य नहीं होगा। तो भगवान जब हमारे कान के द्वारा हमारे मन में आएंगे तो क्या करेंगे? वहां चौथी लाइन क्या लिखी है वो सुनिए, प्रवेश करण अंधरे न स्वानाम सरोरोहम, फिर क्या लिखा है, धुनोति शमलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बैठकर हृदय में उस भक्त के सारे मैल धोएगा, धुनोति धोएगा, शमलम सारे मैल, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जितना कचरा अनादि काल से हमारे हृदय में जमा हुआ है हम उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान प्रकट करके उनको धोएंगे। जैसे माँ बच्चे को जन्म लेते हुए बच्चे को माँ धो के साफ करेगी, बच्चा अपने आप को नहीं कर सकता है, तो ऐसे भगवान अपने भक्त के सारे अवगुणों को धो के साफ करते हैं। कैसे? यथा सलीलम, जैसे बरसात आएगी तो सारा कचरा गीचर सब चली जाएगी और सरोवर साफ हो जाएंगे, जैसे हृदय को साफ कर देंगे। तो भक्त के हृदय में जो मन के विकार है वो भौतिक जगत के भय से जब आस्ते आस्ते साफ होने लगते हैं, हरि कथा से भगवान सफा कर देते हैं, तब भगवान का जो हृदय में है वो भागवत के अंदर से प्रवेश प्रकट होकर भक्त के हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और इसको हमको तब समझ में आएगा जन्माष्टमी असल में, जब हमारे हृदय में भगवान का प्रकट्य होगा। और सबके हृदय में भगवान का प्रकट्य होना चाहिए, हो सकता है और होता है। वीत राग भय क्रोधा मन मया माम आश्रता, बहुत से लोग ऐसे राग और द्वेष को छोड़कर मेरे को पा चुके हैं, भगवान कहते हैं। हाँ, बहुत से लोगों के हृदय में भगवान प्रकट हुए हैं, बहवो बहुत सारे। मदभावम आगता, मदभावम का मतलब कौन बोल रहा है? ये श्लोक भगवत गीता में मदभावम कौन बोल रहा है? भगवत गीता कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण। तो मदभावम जब कृष्ण कहता है तो मद की जगह पे जो बोलता है उसका नाम लिखो तो क्या हो जाएगा? कृष्ण भावना। जब आप कृष्ण भावना भावित होंगे तो कृष्ण आपके हृदय में समय आने के ऊपर प्रकट होगा। कहां से प्रकट होगा? भागवत के सुनने से। और भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? बारहवें स्कंद का 13वें अध्याय का लास्ट वर्स क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्। नाम संकीर्तनम्, भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन। क्योंकि इससे पहला पांचवें अध्याय में मेरे ख्याल में सुखदेव गोस्वामी कह के आए हैं, कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन आपको संसार के बंधन से मुक्त कर देगा, परम ब्रजेत ब्रज धाम तक ले जाएगा, भगवान के धाम में निवास करा देगा। तो कौन सा कृष्ण? लिए अब वही कीर्तन, कीर्तन कृष्ण से को बोलते हैं, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाचनम, सारे पाप को धोगा, धो देगा। और सारे शास्त्रों का ये सार है। तो हमने आपको कहा था, आपको भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है, भगवान तो उसके लिए भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश कर गए हैं। और भागवत की कथा उद्धव ने भगवान के ग्रैंडसन वज्रनाभ को और भगवान की रानियों को कालिंदी आदि को कुसुम सरोवर के पास भागवत कथा जब पहली बार सुनाई श्री कृष्ण के जाने के बाद, उद्धव श्री कृष्ण से साक्षात भागवत सुन के आया था। उद्धव कहता है, श्री कृष्ण इस धाम से जाने से पहले मेरे को भागवत का उपदेश दिया, और उस वक्त मैत्रेय ऋषि भी वहां बैठे थे, और मैत्रियों को कहा कि तुम ये उपदेश विदुर को देना। तो मैत्रेय के प्रेजेंस में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भागवत का उपदेश दिया था, और उद्धव ने वो भागवत जब गाना शुरू किया उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के पास, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, जो वज्रनाभ आदि ने देखे। उस वक्त परीक्षित महाराज को कहा गया था कि कलयुग अब आ गया है, आप चारों दिशाओं में जाकर कलयुग के ऊपर दिग्विजय करो, नहीं तो कलयुग कथा में बाधा डालेगा। तो परीक्षित ने कहा, मैं कब कथा सुनूंगा? तब उत्तर दिया गया कि परीक्षित, तेरे लिए भागवत का अवतार होगा, दुनिया जब भागवत सुनेगी तो पहले तुम्हारे ऊपर उसका अवतार होगा। ये तो भगवान के जो एसोसिएट हैं उनके लिए भागवत कथा की जा रही है। तो उसी वक्त परीक्षित तो चला गया दिग्विजय के लिए, जो भागवत के पहले स्कंद में वर्णन है, कलयुग से मुलाकात हो गई। और यहां उस कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, प्रहलाद आ गए, नारद आ गए, इंद्रादि देवता आए, वो कीर्तन में ढोल बजाने लगे, कीर्तन करने लगे, बड़ा आनंद का उत्सव हुआ। वैसे उद्धव का अर्थ है उत्सव, उत्सव का मतलब जहां उद्धव जाएगा वहां खुशियां ही खुशियां होंगी, फेस्टिवल ही फेस्टिवल होगा। अभी हम नंद उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी महाउत्सव मनाते हैं, उद्धव का अर्थ ही उत्सव है। तो उस वक्त सबको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको क्या चाहिए, मांग लीजिए। तो सबने कहा, आप इस भागवत में प्रवेश कर जाइए। जहां जहां भागवत कथा हो वहां आप भक्तों के हृदय में प्रकट होना, और भगवान ने कहा तथास्तु। तब उद्धव के सामने भगवान भागवत में प्रविष्ट हुए। तो जैसे ये मान्यता है कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी आते हैं, ऐसे जहां भागवत का भगवत पुरुषों के द्वारा हरि कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, भागवत होती है, वहां भक्तों के हृदय में भगवान आके बैठते हैं। तो एक समय में जब हमारे हृदय के सारे मैल धुल जाएंगे, कैसे? चेतो दर्पण मार्जनम, महाप्रभु कहते हैं अपने हृदय के हृदय रूपी दर्पण को धो के साफ करो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की जय हो। अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धो के साफ कर देता है, तब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हमारे हृदय में होगा और उस दिन हमारी जन्माष्टमी होगी। उस दिन हम वसुदेव की तरह आनंदित हो जाएंगे। तो जन्माष्टमी हमारे हृदय में भगवान को प्रकट करने के लिए है, और उसके लिए भागवत का नित्य श्रवण, पांच चीजें उसके लिए महाप्रभु ने बताई है। भागवत शरणम श्रवण, भक्त संग, नाम जप, श्री विग्रह श्रद्धाया अर्चना, भगवान को घर में स्थापित करके अर्चना करना, भक्तों का संग करना, भागवत का श्रवण करना, नाम जप करना, और पांचवी चीज है धामवास। तो धामवास का मतलब है वृंदावन में जाके रहना। तो सब तो वहां नहीं रह सकते, इसलिए प्रभुपाद ने कृपा करके जहां जहां भगवान राधा कृष्ण की स्थापना की है वहां वृंदावन बन गया, जहां गौर निताय है वहां मायापुर बन गया, जहां जगन्नाथ है वहां जगन्नाथपुरी बन गया, जहां रामचंद्र है वो अयोध्या बन गया। तो जहां जहां भगवान को स्थापित किया है, जहां जहां कथा होती है वहां वो धाम हो जाता है। तो आप जहां जहां धाम स्थापित, वो धाम है, जब भगवान का कथा कीर्तन सुनते हो तो वो धाम हो जाता है, क्योंकि वहां भगवान अपने कथा में प्रकट होते हैं। ये तो भागवत के दूसरे श्लोक पहले अध्याय में मंगलाचरण में है। तत्क्षणात् अवरुध्यते, उसी क्षण जब भक्त भगवान भागवत सुनने की इच्छा करता है घर में कि आज मैं भगवत भागवत सुनने जा रहा हूं, भगवान हृदय के अंदर आके रुक के बैठ जाते हैं, मेरी कथा सुनने जाने जा रहा है। तो उसके हृदय में पहले अवरुद्ध देते, मतलब आके रुक जाते हैं। तत्क्षणात् उसी समय श्रोत जब सुनने की इच्छा से भक्त जाता है, तब से भगवान हृदय में आते हैं। हमको अभी इसलिए नहीं दिखते हैं, एक बार नारद को दिखे, चार महीने भक्तों का संग नारद ने किया, अल्प संग, चार महीने, हमारी जिंदगी 80 साल है, उसमें चार महीने कौन से बड़े हैं? 80 साल में चार महीने कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा भी भक्तों का संग किया तो नारद जी ध्यान में बैठे तो दिल में भगवान को देखा, लिखा है भगवान के रूप का दर्शन किया, और फिर भगवान का रूप अंदर दिखने बंद हो गया। तो नारद छटपटाया, तब भगवान ने कहा नारद अब तुम दोबारा नहीं देख सकते। नारद ने कहा क्यों? बोला अब कच्चे हो, पक्के नहीं हो, अब पक्वा कच्चे हो, कच मलाया, तुम्हारे अंदर अभी तक तुम्हारे अंदर कचरा है, अब तुम साधन करके इसको साफ करो। तो हमारे को भी जब हम कृष्ण भावना में आते हैं, कभी कीर्तन में कभी कथा में आनंद आता है, और वो आनंद ऐसा होता है वैसा आनंद फिर कई साल नहीं आता है, कभी किसी और दुनिया की चीज में नहीं आता है, लेकिन फिर वापस वैसा आनंद नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम कच्चे हैं, अंदर में बहुत भौतिक इच्छाएं पड़ी हैं। तो ये कथा और कीर्तन सुनने से आस्ते आस्ते वो भौतिक इच्छाएं समाप्त होंगी। तब नारद कहता है भगवान ने कहा तुम जब ये शरीर छोड़ के आओगे तो मेरे पास आ जाओगे, और तुम जब चाहो मेरे से फिर मिल सकते हो, तेरे को दिव्य शरीर दिया जाएगा। तो ऐसे हमारे को भी इस भगवत कथा और कीर्तन के द्वारा हृदय में भगवान का कभी ऐसे झलक दिखेगा, आनंद का, भगवान आनंद का स्वरूप है, और फिर हमारे को दिल साफ करने का ये जीवन में इस जन्म में अभ्यास करते रहना पड़ेगा, तब हमारा भगवान के साथ मिलन होगा। वहां शब्द शास्त्र में लिखा है भगवान की जनता बनेंगे, जैसे अब आप मॉरिशस की जनता हो फिर आप गोलोक की जनता बनोगे, वहां लिखा है मम जनता, मेरी जनता बनेगो। तो आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि कृष्ण भावना अमृत संघ प्रभुपाद जी के इस आंदोलन के अंदर आप प्रवेश किया है। आपको मानो के भगवान ने जहां जन्म लिया है नाम के रूप में, उसी घर में आप आए हो। अब आप स्वयं नाम भगवान का जप कर, भगवान की कथा भागवत सुनकर, भगवत गीता सुनकर, हरि कथा सुनकर अपने हृदय के मैल को धो लीजिए और समय आने के ऊपर भगवान को हृदय में प्रकट कर लीजिए। तो देवकी के हृदय में जब भगवान आए वसुदेव के हृदय से, कब आए, जब छह उसके बच्चे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कंस के भय से नाश हुए, तब भगवान बलराम जी आके शेष को स्थापित किया जो भगवान के सैया है, जिसके ऊपर भगवान सोते हैं बैठते हैं, और फिर भगवान स्वयं आके प्रकट हुए। तब ब्रह्मा शंकर इंद्र नारद आदि अपने सारे सेवकों के साथ कंस के कारागृह में आए और मां देवकी के उदर में प्रणाम करके कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करके जैसे ये देवता जाने लगे तो वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुजम अद्भुत बालकम, अद्भुत बालक चार हाथों में शंख चक्र गदा लिया हुआ, क्रीट कुंडल पहने हुए, वैजंती माला पहनी हुई प्रकट हुए और दोनों से बात करने लगे। और दोनों ने प्रार्थना की वसुदेव और देवकी ने, तब मां ने कहा बालक बन जाओ, कंस के भय से हमें आपको छुपाना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा वसुदेव तुमको डर लगता है तो मुझे गोकुल में यशोदा के वहां छोड़ के वहां से कन्या लेकर आओ। तो ये भगवान का अद्भुत जन्म है, मां को बाप को पहले तो बात किया। आपके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं बात करते हैं आपसे जन्म से, नहीं करते, बोलते हैं कि हमको घर ले चलो अस्पताल से, बोलते हैं? भगवान ने तो कहा मेरे को यहाँ से ले चलो गोकुल में छोड़ के आओ। तो भगवान का ऐसे दिव्य जन्म है, इसको अगर आप तत्व से समझोगे, तत्वदर्शी महात्मा के भागवत पुरुषों के संग में, तो आपका जीवन कृष्ण भक्तिमय हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?